ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो श्लोक ब्लैक बोर्ड पर हम लोग एक बार आवृत्ति करेंगे।
स एव भगवान अनंत अनंत गुणार्णव आदिदेव उपसंहृत अमर्ष रोष बेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते।
तो आप पढ़ भी सकते हैं।
स ये स भगवान अनंत अनंत गुणार्णव आदिदेव उपसंहृत अमर्ष रोष बेगो लोकानां स्वस्तयास्ते। स एव भगवान अनंत अनंत गुणार्णव आदिदेव उपसंहृताम् अमर्ष रोष बेगो लोकानां स्वस्तयास्ते।
ठीक है, शब्दार्थ करते हैं क्योंकि को पद में नहीं है, गद में है।
स वह एव निश्चय ही भगवान श्री भगवान अनंत अनंत देव अनंत गुणार्णव असीम दिव्य गुणों से के सागर आदिदेव आद्य भगवान अथवा आद्य श्री भगवान से अधिक रूप अभिन्न रूप आद्य भगवान अथवा आद्य श्री भगवान से अभिन्न रूप उपसंहृता जिसने इंद्रिय निग्रह किया है अमर्षा उसकी असहनशीलता का रोष क्रोध बेग बेग शक्ति लोकानाम सभी लोगों के मनुष्यों के स्वस्तये
कल्याण हेतु। आस्ते रहे आते हैं। अनुवाद एवं तत्पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है, भगवान शंकरषण अनंत गुणों के सागर हैं, जिसे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे श्री भगवान से अभिन्न हैं। इस जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। आवृत्ति करिए, श्री भगवान शंकरषण अनंत गुणों के सागर हैं, जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे श्री भगवान से अभिन्न हैं। इस जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। तात्पर्य, अनंत देव का मूल उद्देश्य इस भौतिक सृष्टि का लय है, किंतु वे अपने रोष तथा अमर्ष को रोके रहते हैं। इस जगत की सृष्टि बद्ध जीवात्माओं को श्री भगवान के धाम जाने के लिए एक और अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है, किंतु अधिकांश जीव इस अवसर का लाभ नहीं उठाते। सृष्टि के बाद वे भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। इन क्रियाओं से अनंत देव क्रुद्ध हो उठते हैं और संपूर्ण जगत को विनष्ट कर देना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान होने के कारण वे हम पर दयालु हैं और अपने रोष या अमर्ष को रोक लेते हैं। कभी कभी ही वे अपना रोष प्रकट करते हैं और भौतिक जगत का विनाश कर देते हैं। तो इस अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से अनंत देव के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अनंत देव जिनका गुण या पराक्रम या सौंदर्य भगवान षडेश्वर परिपूर्ण हैं और भिन्न भिन्न अवतारों में भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करते हैं, चाहे वो शुक्र रूप में या मत्स्य अवतार में या वामन अवतार में या अनंत देव या शंकरषण के रूप में, भगवान षडेश्वर परिपूर्ण हमेशा रहते हैं। इसलिए भगवान में अनंत गुण भी हैं। भगवान में अनंत गुण है, इसलिए इनको अनंत देव कहा जाता है या इनको शंकरषण भी कहा जाता है, क्योंकि समस्त लोग जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इनको शंकरषण नाम से भी जाना जाता है या इनको सहस्र फनधारी भी कहा जाता है या शेषनाग के नाम से भी जाना जाता है, जिनके सहस्र फन हैं, 1000 फन वाले हैं, इसलिए इनको शेष कहा जाता है या सहस्र फन वाले भी कहलाते हैं। ये समग्र ब्रह्मांड को अपने फन पर धारण करते हैं, अपने सिर पर धारण करते हैं और सृष्टि का विनाश भी करते हैं। इसलिए शिव जी हमेशा इनका ध्यान करते हैं, क्योंकि शिव जी विनाश के देवता हैं। शिव जी संहार करते हैं, संहार के या तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं। इसलिए शिव जी अपने हृदय में हमेशा शंकरषण का ध्यान करते हैं या अनंत देव का ध्यान करते हैं। शिव जी के उस जो है भगवान शंकरषण हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के स्वांश बलराम जी हैं और बलराम से जो चतुर्भु होता है शंकरषण, वासुदेव, अनुरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर शंकरषण से विस्तार होता है। वास्तव में इस सृष्टि जो भौतिक सृष्टि है शंकरषण के द्वारा संपन्न होती है। इस सृष्टि के कारण जो है शंकरषण देव हैं। शंकरषण से ही नारायण की उत्पत्ति होती है, फिर कारुणोदक साई विष्णु होते हैं, फिर गर्भोदक साई विष्णु होते हैं, फिर क्षुरोदक साई विष्णु होते हैं। ये साई है मतलब सर पर शयन करते हैं। यहाँ गर्भोदक साई विष्णु है जो सर पर शयन करते हैं। ले कभी कभी अनंत देव सर्प के रूप में भगवान के सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जब अक्रूर जी नंदगांव से मथुरा ले जा रहे थे तो अक्रूर जी बड़े भय में और बड़े खेद में फंस गए थे। अक्रूर भगवान के भक्त हैं, यद्यपि फिर भी उनको भ्रम हो गया था और अज्ञान में फंस गए थे कि इनको कंस मार सकता है और इसका पाप का श्रेय जो है मुझे मिलेगा। इसके पहले भी गोपियों ने और यशोदा जी ने अक्रूर जी से कहा था कि आप कृष्ण बलराम को मत ले जाइए, हमारे प्राण हैं, अगर आप हमारे प्राण को ले जाएंगे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, कृष्ण और बलराम दो हमारे नेत्र हैं, इसको हम नेत्र की तरह रखते हैं। जैसे विश्वामित्र जी जब अयोध्या में गए तो दशरथ जी से कहे कि राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, दशरथ जी कहे कि ये तो हमारे प्राण हैं और जो भी मांगना है अब मांग सकते हैं लेकिन राम और लक्ष्मण को मत मांगिए। विश्वामित्र जी बोले कि ये राम और लक्ष्मण कोई सामान्य जीव नहीं है, इनका अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हरण के लिए, भूभार पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए आए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अब भय क्यों करते हो? फिर भी पुत्र वात्सल्य भाव से दशरथ जी को यह नहीं पसंद आया कि ये भगवान है, वो अपना पुत्र ही मानते थे। उसी तरह ब्रजवासी लोग कृष्ण बलराम को जब अक्रूर ले जाने लगे तो सब ब्रजवासी बहुत निराश हुए और अक्रूर को कोसने लगे कि अक्रूर नहीं है तो बहुत बड़ा क्रूर है, इसका नाम अक्रूर कैसे हो गया? अक्रूर जो क्रूर न हो, जिसका हृदय बहुत कोमल हो, लेकिन ये तो बहुत बड़ा क्रूर है। लोग भक्त लोग आते हैं कि आए हैं आज ब्रज में अक्रूर क्रूर बनके, गोपियां कहते हैं तो ब्रज में अक्रूर क्रूर बनकर आ गया है और कृष्ण बलराम को ले गए। तो उस समय जो स्थिति थी अक्रूर जी भी मन से द्रवित हो गए थे, ग्वाल बालों के और उनके परिजनों के नंद यशोदा के भाव को देखो भी, लेकिन राजा कंस का आदेश था कि ले आओ, अगर नहीं ले आते तो उनको भी मृत्युदंड, इधर अभिशाप और उधर मरना है। जैसे मामा मारीच जो है, रावण जब गया मारीच के पास और कहा कि तुम माया मृग बनो, हमें सीता का हरण करना है, तो मारीच ने कहा कि वो सामान्य पुरुष नहीं है, मैं बक्सर में उनके प्रभाव को जानता हूं, वो देखने में भले छोटे लगते हैं, जैसे सूर्य में अनंत रश्मियां हैं, अनंत उष्माएं हैं, लेकिन आकाश में देखने में बहुत छोटा दिखाई देता है, रवि मंडल देखत लघु लागा, लेकिन वो बहुत तेजवान है। भगवान श्री राम इस सृष्टि के उच्च हैं, वही सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण उनसे तुम विरोध मत करो, उनके शरण में चले जाओ। तो मारीच ने के उपदेश से रावण कहा कि तुम गुरु की तरह शिक्षा दे रहे हो, जो मैं कहता हूं वो करो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो मारीच देखा कि दोनों तरफ मरना है, अगर माया मृग बनूंगा तो भगवान के हाथों मरूंगा, अगर नहीं इसकी आज्ञा नहीं स्वीकार करता हूं तो इसके हाथ से मरूंगा। तो मारीच ने सोचा कि रावण के हाथ से मरना ठीक नहीं है, भगवान के हाथ से मरना ठीक है। तो मारीच जो है रावण के बात को स्वीकार कर लिए कि ठीक है। उसी तरह अक्रूर को कंस ने कहा कि जाओ धनुष यज्ञ, कहना कि तुम्हारा मामा कंस जो है बहुत बड़ा उत्सव मना रहा है मथुरा बाजार में आकर, आप लोगों का भी उसमें स्वागत है। तो अक्रूर को इसलिए कंस ने भेजा था कि अक्रूर से नंद यशोदा और ब्रजवासियों का बहुत लगाव था और संबंध भी अच्छे थे, तो अक्रूर के जाने से वो लोग आ जाएंगे कृष्ण बलराम। कंस बहुत कूटनीतिकार था, इसलिए अपना रथ जो है स्वयं का रथ देकर अक्रूर जी को भेजा कि कृष्ण बलराम को इस यज्ञ धनुष यज्ञ में बुलाओ, हमारे भांजे हैं और उनका हम स्वागत करेंगे, जब हमारे यहां ऐसा उत्सव हो रहा है तो उनको लेकर आओ। तो अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को रथ पर लेकर जाने लगे तो सब ब्रजवासी निराश हो गए। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अक्रूर जी पर वैष्णव अपराध लग गया था, क्योंकि ब्रजवासियों की इच्छा के विरुद्ध हो कृष्ण बलराम को मथुरा ले आए थे, इसलिए समंतक चोरी के कार्य में लिप्त हो गए थे। समंतक चोरी का जो योजना बनाई गई थी, सद्धनवा कृतवर्मा और अक्रूर, तो अक्रूर की भी भूमिका थी। अक्रूर जैसे महान भक्त क्यों इस तरह के कार्य में लिप्त हुए, क्यों समंतक चोरी करने में भूमिका अदा किए और शत्राजीत को मरवाने में सलाह दिए, इस तरह का क्यों अपराध? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कृष्ण बलराम को नंदगांव से लेकर जा रहे थे तो वो ब्रजवासियों का साप था, इसलिए वैष्णव अपराध से उनके मन में इस तरह की भावना, दूषित भावना आई थी। तो जब अक्रूर जी को भय भी हो रहा था, वास्तव में अक्रूर जी नहीं चाहते थे कृष्ण बलराम को ले जाना, लेकिन उनके मन में एक भाव आया कि कृष्ण बलराम को कंस मारने की योजना से बुलाया है और मैं इस कार्य को करने में सहयोग दे रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मन ही मन अपने आप को कोस रहे थे अक्रूर जी। जब जमुना के तट पर भद्रोढ़, आप जब वृंदावन से परिक्रमा 84 कोस परिक्रमा करते हुए मथुरा की तरफ जाएंगे तो भद्रोढ़ एक जगह है जहां ब्राह्मणों की पत्नियों ने कृष्ण को भात खिलाया था, ब्राह्मण पत्नियों ने, तो जगह का नाम है भद्रोढ़। और भद्रोढ़ से आगे बढ़ेंगे तो अक्रूर घाट है, इस समय जमुना जी वहां से दूर चली गई हैं, तो अक्रूर घाट पर उस घाट, उस जगह का नाम ही अक्रूर घाट से जाना जाता है, पहले अक्रूर घाट नाम नहीं था। तो वहीं अक्रूर जी जमुना जी के तट पर बहुत विषाद मन से सोच रहे थे कि कृष्ण बलराम को मैं लेकर जा रहा हूं, इसका परिणाम तो गलत होगा। तो यह विचार करके कुछ समय के बाद फिर जमुना जी में स्नान इत्यादि किए। ऐसा कहा जाता कि अक्रूर जी दोपहर में कृष्ण बलराम को लेकर चले थे और संध्या का समय हो चुका था, या दोपहर का समय हुआ हो, संध्या वंदन का समय हुआ था। सुबह चले होंगे तो दोपहर हुआ होगा, या दोपहर में चले होंगे तो शाम हुआ होगा, तो संध्या वंदन का समय हुआ था, इसलिए जमुना जी में सोचे स्नान करके और संध्या वंदन कर लूं। तो जैसे जमुना जी में प्रवेश किए और डुबकी लगाए तो देखे कि जमुना जी में भी रथ है और कृष्ण बलराम है, वही रथ जो बाहर है वो अंदर भी जल में दिखाई दे रहा था। तो उनको आश्चर्य हुआ, फिर बाहर आकर देख तो वो रथ बाहर भी था, कृष्ण बलराम ऊपर भी थे। फिर डुबकी लगाए तो देखे कि बलराम जी शेष के रूप में परिणित हो गए और कृष्ण उस पर शयन करने लगे। तो बलराम जी भी संकर्षण है, संकर्षण के मूल हैं, और बलराम जी कभी कभी शेष सैया के रूप में भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान के हर अवतार में संकर्षण या अनंत देव भगवान की सहायता करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। तो शेष सैया के रूप में भगवान कृष्ण उनके ऊपर शयन कर रहे थे। भगवान सर्प पर शयन करते हैं, सर्प का जो शरीर होता है बहुत कोमल होता है और बहुत शीतल होता है, यहां भी भगवान सर्प सैया पर हैं। जो तीन विष्णु हैं वो सर्प पर शयन करते हैं, कारणोदक साई विष्णु सर्प पर शयन करते हैं, गर्भोदक साई विष्णु भी सर्प पर शयन करते हैं, क्षीरोदक साई विष्णु भी सर्प सैया पर हैं। तो ये सर्प के रूप में शेष नाग हैं, भगवान शेष नाग के रूप में हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। जब कंस के कारागार में भगवान अवतार लिए तो तो उस समय भी वसुदेव जी लेकर चले तो शेष नाग पीछे पीछे चल रहे थे, छाया करके अपने सहस्र फणों से छाया करके चल रहे थे। भगवान के फण के विषय में बताया गया कि भगवान के जो फण हैं इतने विस्तार से हैं कि ब्रह्मांड जो है उसके ऊपर सरसों के बराबर दिखाई देता है। भगवान अनंत देव के इतने बड़े बड़े फण हैं, इसमें समग्र ब्रह्मांड जो है सरसों के दाने की तरह स्थित रहता है। इनके अनंत गुण भी हैं, समस्त जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, समस्त ब्रह्मांड को भी आश्रय प्रदान करते हैं और शिव जी को संहार करने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे महानगर पालिका में एक तोड़ने का विभाग है, नगर पालिका का एक कंस्ट्रक्शन विभाग है और एक बड़े बड़े इमारतों को तोड़ने के लिए एक विभाग बनाया गया है। एक विभाग है जो उसको देखभाल करता है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, रोड इत्यादि की व्यवस्था करता है। तो उसी तरह संकर्षण इस सृष्टि का लय भी करते हैं। जब प्रलय करना होता है तो अनंत देव संकर्षण के रूप में, संकर्षण अनंत देव के रूप में अपने मुखों से अग्नि की ज्वाला निकालते हैं, उनके मुखों से अग्नि की लपटें निकलती हैं जिसमें सारा ब्रह्मांड जो है जल जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अनंत देव भगवान कृष्ण से अभिन्न है। ऐसे भगवान के अनेक अवतार हैं, वो सब भगवान से अभिन्न है। भगवान लीला के दृष्टि से भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं लेकिन सब मिलाकर एक हैं। एको अहम बहुश्यामि द्वितीयो नास्ति, भगवान दो ने हमेशा एक ही रहते हैं, एक कम भगवान एक वचन में रहते हैं दो वचन में नहीं होते हैं लेकिन फिर भी बहुश्यामी बहुत हैं। भगवान के अनंत अवतार हैं, भगवान के इतने अवतार हैं जिसकी गणना आप नहीं कर सकते हैं। समुद्र के लहरों को गिन सकते हैं, कोई गिन सकता है? समुद्र के लहर कोई नहीं गिन सकता है। या नदी के बालू को मान लीजिए कोई गिन सकता है? गिन नहीं सकता है। लेकिन भगवान के इतने अवतार हैं कि कोई गणना नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी भगवान के मुख्य मुख्य अवतारों की चर्चा सुखदेव गोस्वामी किए हैं। तो चूंकि संकर्षण श्री भगवान के स्वांश हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में जब लीला करने वाले थे, स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे तो जोग माया को आदेश दिए कि मेरा ही अंश देवकी के गर्भ में पल रहा है और वहां से उसको लेकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो जोग माया जगिए, जग जाओ, क्यों सो रहे हो? भगवान सर्प पर सोते हैं, आप बैठे बैठे भक्त लोग खड़े खड़े भी सो लेते हैं और बैठे बैठे तो सोते ही हैं, खड़े खड़े भी भक्त सोते हैं, कुछ भक्त चलते हुए भी सो लेते हैं, चलते चलते भी भक्त सोते हैं। एक बार न्यू भक्ताश्रम में एक भक्त ज्वाइन किया था 92 में, तो सोकर भी चलता था, वो सोए में खड़े हो जाता था और चलने लगता था और चलने में उसको अनुभव नहीं होता कि मैं चल रहा हूं। तो उसको हम लोग रूम में लॉक करके रखते थे कि रात में कहीं गिर न जाए, छत से ऊपर न गिर जाए। तो निद्रा जो भगवान सोते हैं वो जोग निद्रा में सोते हैं, या भक्त लोग भी सोते हैं तो जोग निद्रा में सोते हैं। जैसे जोग माया को भगवान आदेश दिए कि जाओ मेरा अंश जो देवकी के गर्भ में पल रहा है, देवकी के गर्भ से लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो, इसको खींच करके वहां पर डाल दो। इसलिए संकर्षण, बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है, एक जगह से खींच करके कर्षण करके दूसरे जगह ले जाएगी, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी है। तो जोग माया जो भौतिक जगत में जिनको दुर्गा कहा जाता है और आध्यात्मिक जगत में जोग माया कहा जाता है, महामाया और जोग माया, जैसे गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी, कात्यायनी महामाये महाजोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, ब्रज कुमारियों ने कात्यायनी देवी अर्थात दुर्गा जी की उपासना की थी, या जोग माया भी कह सकते हैं। जोग माया जो भगवान के लीला में सहयोग देती हैं और जो महामाया इस सृष्टि का देखभाल करती हैं। तो गोपियों ने कात्यायनी देवी की उपासना करके कहा कि आप महामाये महा उपाय जानती हैं, कात्यायनी महामाया महाजोगिनी, अनेक प्रकार के योग सिद्धियों को आप जानती हैं, महाजोगिनी हैं। कात्यायनी महामाये महाजोगिन अधीश्वरी, आप अधिष्ठात्री हैं, इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं और भगवान की बहन हैं। जोग माया भगवान की बहन के रूप में गोकुल में प्रकट हुई। भगवान ने कहा जाओ तुम यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हो जाओ, तुम मेरी बहन के रूप में जानी जाओगी। इसलिए जो सुभद्रा जी हैं वो भी महामाया हैं, जोग माया हैं कि बहन है, वही सुभद्रा जी हैं। तो गोकुल में जो यशोदा जी के लड़की हुई थी वो जोग माया, जो भगवान की बहन के रूप में, तो जोग माया को भगवान कहे कि गोकुल में जाओ जहां गाय गोपियों से जो अलंकृत है ब्रज, ब्रज का अर्थ होता है जो गायों से गोपों से जो हमेशा सुशोभित रहता है उसको ब्रज कहते हैं, जहां गायों का अनंत समूह रहता है वो गोकुल है, गोकुल जहां गायों का समूह निवास करता है वो गोकुल है। तो आप गोकुल में जाओ, ब्रज में जाओ, ब्रज वृंदावन में जाओ और बलराम जी को लेकर रोहिणी के घर में स्थापित कर दो। तो ये काम जोग माया ने किया और भगवान कहे कि तुम्हारा अनेक नाम होगा, एक काम करने से तुम्हें मैं श्रेय दूंगा कि तुम्हारी हर जगह पूजा होगी, तुम समस्त कामनाओं को पूर्ण करोगी, इसलिए तुम्हारे कई नाम होंगे, जैसे विजया, कामदा, शारदा, काली, भद्रकाली, नारायणी, कन्याका, अनेक नाम है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम एक काम करो जिससे तुम लोक में हर जगह पूजित होगी, तुम्हारी लोग पूजा करेंगे और सबके भौतिक कामनाओं को तुम पूर्ण करोगी, इसलिए लोग पाठ करते हैं। जिनको भौतिक कुछ कामना है, कामना की सिद्धि चाहिए तो लोग मंत्र पाठ करते हैं, सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, ये सब नाम है। स्वाधा स्वाधा नमस्तुते शरणागत दिनारतम परित्राण प्राणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमस्तुते नारायणी, क्योंकि भगवान की ये भक्त हैं इसलिए इनको नारायणी नाम से भी जाना जाता है। संसार में जो भी भौतिकतावादी लोग हैं जिनको भौतिक कामना चाहिए, धन्य धन्य सुतान्वित, वो दुर्गा की देवी की उपासना करते हैं, ज्यादा लोग देवी की उपासना करते हैं या देवताओं की उपासना करते हैं, वे लोग नहीं जानते हैं कि सबके मूल भगवान श्री कृष्ण हैं। और भगवान ये भी कहे नामकरण कर दिए जोग माया का और बलराम जी का भी नामकरण कर दिए कि वो बलशालियों में प्रसिद्ध होंगे इसलिए उनका नाम बलराम होगा, वो सबको के लिए रमणीय होंगे आनंद देने वाले होंगे इसलिए भी उनको बलराम कहा जाता है। वो तुम्हारे द्वारा खींच कर ले जाएंगे, इसलिए संकर्षण नाम से जाने जाएंगे। हल आयुध धारण करें, इसलिए उनका नाम हलायुध होगा। अनेक भगवान कृष्ण अपनी श्रेष्ठता स्थापित किए। बलराम जी भले इस अवतार में बड़े हैं, लेकिन नामकरण भगवान कृष्ण कर दिए उनका, मतलब बड़े भगवान ही हैं, कृष्ण ही बड़े हैं। अगर छोटे होते तो नामकरण क्यों करते हैं? अपने बड़े भाई का नामकरण कर दिए कि बलराम नाम से जाने जाएंगे। भले बलराम हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण पर आश्रित हैं। आप कृष्ण बलराम मंदिर देखेंगे तो बलराम जी कृष्ण के ऊपर ऐसे आश्रित हैं ना। कृष्ण खड़े हैं और बलराम जी अपने हाथ को कहां टेके हैं? कृष्ण के ऊपर ऐसे टेके हैं, माने बल के भी आश्रय भगवान कृष्ण हैं, बल भी जिस पर आश्रित है। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, मैं बलवानों का बल हूं, बलराम का भी मैं ही बल हूं। जो बलशालियों में जो बलराम है उनका भी बल मैं हूं, बलम बलवता चाहूं। तो इसे भ्रम नहीं होना चाहिए, सब सारे चाहे अनंत देव जो भी कार्य करते हैं भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, और भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि समग्र सृष्टि के मूल कारण अनंत देव हैं, और अनंत देव के कारण संकर्षण हैं, और संकर्षण के कारण बलराम हैं, और बलराम के कारण भगवान श्री कृष्ण है। सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण है। महाराज परीक्षित को जिज्ञासा हुई कि कृष्ण के विषय में तो बहुत विस्तार से सुने थे, लेकिन बलराम जी के विषय में ज्यादा नहीं। इसलिए उन्होंने जिज्ञासा किया कि बलराम जी के विषय में भी बताइए, जो बड़े भाई के रूप में राम अवतार में छोटे भाई के रूप में शेष अवतार लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए थे। लक्ष्मण जी छोटे भाई के रूप में आए थे, शेष अवतार कहे जाते हैं। छोटे भाई के रूप में भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री राम जब जंगल में गए 14 वर्ष, तो लक्ष्मण जी साथ में थे, और लक्ष्मण जी भगवान राम की अहर्निश सेवा करते, दिन रात जग करके, कभी सोए नहीं। चाहे चित्रकूट हो, चाहे दंडकारण्य हो, या पंचवटी हो, लक्ष्मण जी हमेशा रात्रि में विरासन में होकर जगे रहते थे। अब चित्रकूट में जाएंगे तो लक्ष्मण जी वीर आसन में रात को धनुष बाण लेकर जगकर सेवा करते थे, हमेशा सेवा करते हैं। जब भगवान श्री राम सो जाते थे तो लक्ष्मण जी उनका पांव दबाते थे। जब विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को लेकर जनकपुर जा रहे थे धनुष यज्ञ देखने के लिए, तो विश्वामित्र जब शयन करते थे तो राम और लक्ष्मण उनका चरण दबाते थे, आदर्श शिष्य के भूमिका में। भगवान आदर्श स्थापित करते हैं। मुनिवर शयन किन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई मिलकर गुरु विश्वामित्र का चरण संवाहन करते थे, और वशिष्ठ का भी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम महिमा था। भगवान आदर्श सिखाते हैं। तो जब भगवान श्री राम सो जाते थे तो लक्ष्मण जी उनका चरण दबाते थे। गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान, और गुरु के पहले भगवान श्री राम जग जाते थे। अब आजकल गुरु को ही जगाना पड़ता है, शिष्य को जगा करके उसको स्नान भी कराना पड़ता है। आज के जो शिष्य हैं आलसी हो गए हैं। जैसे पहले के जो विद्यार्थी होते थे, वो काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथई वचा, अल्पहारी गृहम त्यागी विद्यार्थी। पंच लक्षण विद्यार्थी के, 5 लक्षण हैं, और भक्त के भी। भक्त और विद्यार्थी, साधु और विद्यार्थी दोनों का साधना है, एक है। अगर जो विद्यार्थी सुख चाहता है उसको विद्या कहाँ है? हम लोग पढ़े थे कि विद्यार्थी कुतो सुख, विद्यार्थी को सुख कहाँ है, और सुखार्थी कुतो विद्या, और जो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है। विद्या भी एक साधना है। जैसे कृष्ण बलराम जब पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी में गए तो 64 दिन में सब कुछ सीख लिए, इतने तत्पर से सीख रहे थे। और गुरु के लिए जंगल से लकड़ी लाना, गोचारण करना, खेती में कार्य करना, सोते नहीं थे, दिन रात अपने काम में लगे थे। तो काग चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह निद होना चाहिए। कुत्ता सो जाएगा तो चोरी हो जाएगा, कुत्ता सोते हुए भी जागता है, ऐसा नहीं कि सो गया और चोर चोरी करके ले गया। अब जैसे भी पांव दबा कर जाएंगे कुत्ता जग जाता है। स्वान निंद्रा तथई वच, अल्पहारी थोड़ा खाना, गृहम त्यागी घर से दूर रहना, या घर के चिंताओं में नहीं रहना। मंदिर में रह करके भी घर के विषय में सोचते रहेंगे तो गृहवासी हो जाएंगे। इसलिए गृहवासी नहीं होना है। अल्पहारी गृहम त्यागी विद्यार्थी पंचलक्ष। लेकिन कलिजुग के एक हास्य में एक भक्त बता रहे थे कि कलिजुग के जो विद्यार्थी होते हैं वो ठीक इसके उल्टा होते हैं। वो होते हैं कि अखंड निद्रा, चपंत भोजन, खूब यहां तक खाएंगे, इतना खाएंगे कि पूरा अकंठ भोजन, चपंत भोजन, चपंत पानी, अखंड निद्रा तथई वचा, गृहवासी विद्या उदासी, कलौ विद्यार्थी लक्षणम। ये कली जुग के लिए ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए और ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। इतना मत सोइए कि आपका सब चीज चोरी हो जाए। जो हमारी साधना है, जो हमारी पूंजी है, विद्यार्थी ब्रह्मचारी की पूंजी क्या है? उसकी साधना, उसका जप करना। अगर सो जाएंगे तो आपका जप करना, आपका साधना सब चोर चुरा ले जाएगा। अगर घर का कोई मालिक सो जाता है तो चोर का भय रहता है। या प्लेटफार्म पर मान लीजिए आप सो गए हैं, आपके पास सामान है तो सारा सामान जा सकता है। या मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, सो गए हैं, बिल्कुल घोड़ा बेचकर सो जाएंगे तो आपका सारा सामान चोरी हो जाएगा। तो भक्ति में भी ब्रह्मचारी को ऐसे सोना है कि सोते हुए भी वो सावधान रहे। सोते हुए सावधान रहना मतलब इतना बजे जगना है। तो भगवान श्री राम गुरु से पहले जग जाते थे, कृष्ण भी। ये नहीं कि गुरु को नहीं जगाना पड़ता, ये जग करके तब गुरु को जगाते थे लोग। पहले लोग अलार्म से नहीं जगते थे, जब मुर्गा बोलता था तो जगते थे। अरुण शिखा धुनिकान, मुर्गा का जो शिखा होता है लाल होता है। अरुण शिखा धुनि माने मुर्गा जब बोलता है तो लोग जग जाते थे। या कुछ अन्य पक्षी भी बोलते हैं, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में अनेक प्रकार के पक्षी बोलते हैं, पक्षी भी जग जाते हैं सूर्योदय होने से पहले। कबूतर हैं, कौवे हैं, गौरैये हैं, ये भी जग जाते हैं। प्रथम रश्मि का जब आगमन होता है, सूर्य जब क्षितिज से आने से पहले ही सब लोग जग जाते हैं, प्रकृति में सब कलरव होने लगता है, पक्षियों का, पशु पक्षी सब जग जाते हैं। तो इससे संकेत मिलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं कि आयु विद्या सब कम हो जाती है। सूर्योदय के बाद जो सोते हैं उनका यह श्री धन सब घटने लगता है। सूर्योदय के बाद कभी नहीं सोना चाहिए, या सूर्यास्त में भी नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय में और सूर्यास्त में सोना निषेध है। खाना भी निषेध है। तो इस तरह से भगवान अनंत देव के जो गुणों के सागर हैं, यहां पर श्लोक में आया है गुणान रव, अनंत गुणान रव माने अनंत गुणों के सागर हैं। सागर कहने का मतलब उनमें इतना गुण है कि वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, सरस्वती भी उनको गुणों को वर्णन नहीं कर सकती हैं। ऐसे कहा जाता कि शेषनाग भगवान के गुण का हमेशा कीर्तन करते हैं, शेषनाग भगवान कृष्ण के गुणों का हमेशा कीर्तन करते हैं, शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश नारद सुखव्यास सब लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, लेकिन कीर्तन करते करते फिर भी उनके गुणों का कीर्तन नहीं कर पाते, इतना अनंत भगवान के गुण हैं। तो भगवान के ही अंश हैं, स्वांश हैं, इसलिए इनके भी अनंत गुण हैं, सरस्वती भी इनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती है। तो क्या क्या गुण है आगे विस्तार से और आप भी सुनेंगे, हम तो संक्षेप में यहां बताए कि उनके क्या क्या गुण हैं। भगवान के अनंत गुणों में एक है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, समग्र जीवों के जो भौतिकता में है या भोग विलासी उनका भी पालन करते हैं, अपने सिर पर उठाए हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने पिता के विरुद्ध भी हो जाता है, पिता के विरुद्ध भी चलने लगता है, तो भी पिता उसको प्रेम करता है, उसी तरह भगवान इस अनंत सृष्टि में अनंत जीव जो भगवान के विरुद्ध आचरण करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, बोलते हैं भगवान कहाँ है, या भगवान की निंदा करते हैं, या भगवान से ही रोष करते हैं, ऐसे लोगों को देखकर अनंत देव को बहुत क्रोध होता है। जो भगवान के विमुख विषय विलासी हो जाते हैं तो ऐसे जीवों की सृष्टि को भगवान प्रलय करके जला देते हैं, कभी कभी रोष करते हैं, उनको रोष होता है, क्रोध होता है, असह्य क्रोध होता है, उसको सहन करते हैं लेकिन कभी कभी जला देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान वैसे लोगों को भी अपने सिर पर उठाए हैं सिर पर धारण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के कल्याण के लिए उसको सिर पर उठाए हैं, सिर पर उठाने के बावजूद भी अगर कोई उनके आज्ञा को शिरोधार्ज नहीं करता है तब भगवान क्रोध करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि घर को सजा करके भी देखना चाहिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए घर बनाए अपने रहने के लिए कि घर में हम सुखी होंगे, जब हर तरह से देखता है फिर भी वो घर में कुछ न कुछ अपशकुन होने लगता है तब उसको जला देता है ऐसे घर से क्या प्रयोजन है। जैसे बंगाली में कहते हैं कि कैसे है, ये सूखे लागिया गृह बांधिया अनल पुलिन गेला। आदमी घर बनाता है तो सोचता है कि इसमें हम बहुत आराम से रहेंगे, अपना सब सामान सुरक्षित रखेंगे, लेकिन घर होने के बाद भी असुरक्षा और बढ़ जाती है कभी कभी। अब मान लीजिए अच्छा घर बना लिए तो अच्छा घर देख करके भी लोग चोरी करने आते हैं, झोपड़ी रहेगा तो कोई नहीं आएगा, झोपड़ी है बिना किवाड़ का है तो लोग सोचेंगे बहुत कंगाल है, और अच्छा खूब घर बना लीजिए तो लोग बोलेंगे बहुत पैसा वाला है, तो घर अच्छा बना लेने पर भी उसको परेशानी होता है, उसको लोग बोलेंगे इतना पैसा दे दो नहीं तो हम शूट कर देंगे, तान दो दे दो, बोलते हैं कि दे दो नहीं तो मार देंगे। कोई भी चीज संसार में अच्छा कीजिए बहुत अच्छा आपका उद्योग चलने लगे, बहुत अच्छा आपका नाम हो जाए, बहुत ख्याति हो जाए, तो आपके पास जो है जो बोलेंगे इतना पैसा दे दो। तो भौतिक जगत में लेकिन भगवान सबके प्रति सम है। जीव भले उनके विरुद्ध चलता है, उनका भक्ति नहीं करता है, फिर भी भगवान उसको सिर पर ही उठाए हैं। सिर पर उठाने के बावजूद भी उसका अगर हम अनुभव नहीं करते हैं कि भगवान हमको खिला रहे हैं, भगवान हमको धारण किए हैं, भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं, वही सबसे बड़े सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानम, जब इसका अनुभूति नहीं करता है जीव, तब भगवान को बहुत क्रोध आता है और फिर जला देते हैं सबको, जला करके राख कर देते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक जगत जो है बद्ध जीवों को भगवत धाम जाने का एक सुअवसर प्रदान करता है। भगवान बद्ध जीवों के लिए भौतिक जगत की रचना करते हैं कि यहां आकर के अनुभव करे और भगवान के धाम में जाने का प्रयास करे। ये हमें भगवत धाम जाने के लिए एक अवसर मिला है, अगर इस अवसर का हम दुरुपयोग करते हैं तब बाद में अनंत देव इसको जला देते हैं, जला करके राख कर देते हैं। मैंने घर को सजा करके भी देखिए और अंत में नहीं होता है तो उसको जला दीजिए। लोग बोलते हैं कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी आ मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। आजकल लोग साधु सन्यासी बनते हैं ज्यादातर लोग, तो नारी स्त्री मर गई, घर में संपत्ति भी नहीं है, कुछ नहीं है खाने पीने का, तो लोग सन्यास का वेश धारण कर लेते हैं कि खाने को मिलेगा और रहने को अच्छा जगह मिले। नारी मुई गृह संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, मुड़ मतलब सिर को मुड़ा करके सन्यासी हो जाते। तो ऐसे सन्यासी बनने से कोई लाभ नहीं है। रूपा जी लिखते हैं ऐसे सन्यासी बनना नहीं बनना ये कहीं है। पेट वृत्ति के लिए या जीवन वृत्ति को चलाने के लिए सन्यास धर्म नहीं है। जो इस भौतिक संसार में जो बद्ध जीव हैं, या उनका आने का उद्देश्य मुड़ मुड़ाए सन्यासी बनना नहीं है, भजन करने के लिए आना है। यहां आकर अगर कोई भौतिक क्रियाकलापों में लिप्त हो जाता है तो संकर्षण देव वैसे लोगों पर अमर्ष और रोष प्रकट करते हैं। बोलते हैं तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या है, यहां पाए थे भजन करने के लिए, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपाल। हम लोगों का उद्देश्य एक ही है, भगवान के धाम में जाना भजन करके, और इसलिए अनंत देव सिर पर उठाए हैं कि हमारे सिर पर बैठो और भजन करो और भगवान के धाम में जाओ। जब सिर पर भी रह करो बदमाशी करने लगता है तो सिर से पटक देते हैं, चलो अब यहां रहने के काबिल नहीं हो, इस जमाने के काबिल नहीं हो, फिर दूसरे सृष्टि में फिर उसको अवसर बार बार अवसर मिलता है। अवसर तो बार बार मिलता है लेकिन फिर भी उस अवसर का जब हम दुरुपयोग करते जाते हैं तब भगवान ये करते हैं, जल्दी भगवान भी नहीं करते हैं। यहां लिखा गया है असहनशीलता, उनकी सहनशीलता इतनी है भगवान कभी क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि पूरी सृष्टि भगवान के विरुद्ध हो गई, सब भगवान के विरुद्ध आचरण करने लगे, तब वो क्रोध करते हैं, जल्दी क्रोध नहीं करते हैं। भगवान में जल्दी क्रोध नहीं होता है, और जब क्रोध करते हैं तो सब ब्रह्मांड जो है जलकर क्षार हो जाता है, राख हो जाता है। ये भी भगवान का एक गुण है कि भगवान जल्दी क्रोध नहीं करते हैं और जीव के अनंत अपराधों को सहन कर लेते हैं। जो सहन करने योग्य ने वो भी सहन कर लेते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के सौ अपराध को सहन किए, सौ तक सहन करते के जब नहीं माना तब उसका कर दिया। भगवान जल्दी जीव का मंगल कभी नहीं करना चाहते हैं, हमेशा जीव जगत का मंगल करना चाहते हैं, चाहे अनंत देव के रूप में चाहे अन्य अवतारों में भी भगवान हमेशा मंगल करना चाहते हैं, मंगलम भगवान विष्णु। लेकिन हम जब उसका कुछ भी अनुदान नहीं करते हैं, उसका सहानुभूति नहीं प्रकट करते हैं, अनुभव भी नहीं करते हैं कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, तब भगवान करते हैं। ऐसे भी भगवान का चाहे मारना हो या जिलाना हो, दोनों करुणा में है, कृपा में है। भगवान मारते हैं वो भी कृपा है, और जिला रहे तो वो भी कृपा है। यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जला क्यों दिए, जला दिए इसमें मतलब भगवान बहुत ये है, द्वेषी है, नहीं। भगवान का मारना भी प्रेम जैसा ही है। भगवान का प्रेम या द्वेष करना या मारना, वो भी उसमें भी जीव का मंगल होता है। भगवान कभी जीव के प्रति ऐसे अमर्ष क्रोध करते हैं तो उसमें भी जीव का कल्याण ही होता है, फिर उनको अवसर मिलता है, पुनः उनको अवसर मिलता है भगवत धाम जाने के लिए। हरे कृष्ण। तो समय समाप्त हो गया है, कोई प्रश्न है? अगर एक एक प्रश्न होगा तो कह बोलिए, बोलिए ऐसे ही बिना माइक कहीं बोलिए।
हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रवचन प्रभु, बढ़िया। जैसे बोले कि अकुर जो अकुर वैष्णव अपराध किया, जिसके वजह से उसको बाद में जो समंत चोरी किया, लेकिन वो तो कृष्ण का, अगर अकुर काम नहीं करता था तो फिर कंस को मारा गया। अकुर तो एक मेडिएटर बना ना कि भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए, तो कृष्ण को मालूम था।
ऐसे तो सब कुछ भगवान के ही लीला में, वो तो भी दिव्य है। अक्रूर जी का चोरी करना भी दिव्य है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो उनका चोरी करना, हम लोग जैसा चोरी करना नहीं है, वो भी भगवान के योजना के अंतर्गत है। कोई भक्त अगर कुछ चोरी करता है, वो कोई महान भक्त में कोई दोष दिखाई देता है तो भगवान की योजना से होता है। अक्रूर जी का चोरी करना भी भगवान की योजना में है, भगवान की प्रेरणा है, भगवान लीला विस्तार करने के लिए करते हैं। जैसे चार कुमार अभिशाप दिए जय विजय को, तो भगवान की योजना थी, भगवान चाहते थे। ऐसे प्रभुपाद जी लिखे हैं कि जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को ले गए तो सब गोप सब असंतुष्ट हो गए, अक्रूर जी के ऊपर बहुत ये हो गए, तो उनका वैष्णव अपराध लगे। ऐसा प्रभुपाद जी एक जगह कृष्णा बुक में लिखते हैं या कहीं लिखे हैं, मैं पढ़ा हूं, मैं ध्यान नहीं है कहाँ है। तो वो अपराध के चलते अक्रूर जी उस मंत्रणा में सम्मिलित हुए, कृतवर्मा, सद्धनवा और अक्रूर, तीन मिलकर योजना बनाए। कि सद्धनवा कहा कि ये तो सत्यभामा का विवाह मेरे साथ करने वाला था, सत्राजित कृष्ण के साथ कर दिया। और उसी तरह कृतवर्मा को भी सत्राजित ने कहा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराऊंगा। तो ये तीनों लोग मिल करके मीटिंग किए। जब कृष्ण बलराम ये खबर सुने कि पांच पांडव कुंती माता लक्षा गृह में जल गए हैं, तो भगवान हस्तिनापुर गए खबर लेने के लिए। इधर उस अवसर का लाभ उठा करके सद्धनवा और कृतवर्मा और अक्रूर जो है रात में सत्राजित का वध करके मणि चुरा लिए, सत्राजित का वध भी कर दिए, इतना बड़ा जघन्य अपराध। और जब भगवान को यह खबर मिला तो भगवान श्री कृष्ण बलराम आए और पीछा किए सद्धनवा, उसमें मुख्य भूमिका सद्धनवा का था। तो भगवान सद्धनवा का तो वध कर दिए और बाद में अक्रूर जी का वध नहीं किए। अक्रूर जी बनारस भाग गए थे, वहां समंतक मणि के प्रभाव से इतना सोना उनको प्राप्त होता था कि यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को सोना दान करते थे। तो यह खबर भगवान श्री कृष्ण को लग गई, समझ गए कि मणि जो है अक्रूर जी के पास है, जबकि वो भी उसी अपराध में सम्मिलित थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको बोले नहीं, कहे चाचा जी मणि कहाँ है। बड़े मृदु भाव से भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे चाचा जी, वो मणि कहाँ आपके पास है, मणि दे दीजिए। और कुछ बोले नहीं, उनके अपराध को क्षमा कर दिए। जैसे भगवान अपने भक्त के अपराध को क्षमा कर देते हैं, जो बाली ने अपराध किया था वही सुग्रीव भी किए, जो रावण ने गलती किया था वही विभीषण भी किए, लेकिन अपने भक्त के दोष को भगवान क्षमा कर देते हैं। तो अक्रूर जी को मृत्यु दंड नहीं दिए, जबकि अक्रूर जी भी उतना ही गलती में वो भी सम्मिलित है। तो जो भी हो, अक्रूर जी से ब्रजवासियों का दिल जो है दुख गया था। किसी वैष्णव का दिल जब किसी के प्रति ये होता है तो उसमें ये भाव आता है, काम क्रोध लोभ, ये भौतिक विकार आता है। वैष्णव अपराध होने से ये काम क्रोध लोभ का भाव ज्यादा आता है। जैसे सौभरी मुनि ने गरुड़ जी के प्रति अपराध किया तो तुरंत शादी कर लिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। सौभरी मुनि अपराध किए गरुड़ जी का, तो वैष्णव अपराध के चलते उनमें काम की भावना उत्पन्न हो गई। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैष्णव अपराध होने से ही व्यक्ति के अंदर ये वासना आती है, कामना आती है। समाप्त करें ना। शील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।